हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद शिवांशा को रिसेप्शन पार्टी से लेकर जा रहा था। वो पहले ही जानता था अंकुश ने शिवांशा को ब्लैकमेल किया ताकि वो वेद को जान से मार दे। वेद देखना चाहता था कि शिवांशा इस मामले में क्या स्टेप लेती है। शिवांशा ने वेद को सब बता दिया था। उसकी हेल्प से वेद को अंकुश के सीक्रेट ठिकाने के बारे में पता चला। वेद ने अंकुश को अरेस्ट करवा दिया था। अब वो शिवांशा को लेकर घर के लिए निकला था। शिवांशा ने देखा वेद ने गाड़ी चौहान पैलेस की तरफ लेने के बजाय यू टर्न लिया है। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। शिवांशा ने धीमी कांपती आवाज में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? घर तो दूसरी तरफ है। चुपचाप बैठी रहो, वेद ने सख्त आवाज में कहा। उसने मिरर से शिवांशा को देखा तो वो डरी हुई लग रही थी। वेद ने आईज रोल की और बोला, इस तरह डर क्यों रही हो? अभी मारने नहीं ले जा रहा और न ही तुम्हारे उस अंकुश की तरह हूँ जो अकेले में ले जाकर उल्टी सीधी हरकतें करूँगा। वो मेरा कब से हो गया? जल्दबाजी में शिवांशा के मुंह से निकला। अच्छा, फिर उसके सामने तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुलती? तब उसे कह नहीं सकती थी कि उसे तुम्हें छूने का हक नहीं है, वेद ने इंटेंस वॉइस में कहा। वो बातों ही बातों में शिवांशा को समझा रहा था ताकि ऐसी सिचुएशन में वो आवाज़ उठा सके। शिवांशा बिल्कुल चुप हो गई थी। वो मन ही मन बोली, काश मैं आपको समझा सकती कि हम जैसे लोग जो उनके एहसानों तले दबे हैं उनकी इज्जत के कोई मायने नहीं होते, वरना कौन अपनी मर्जी से इतना सब कुछ सहता है। शिवांशा ने आगे कुछ नहीं कहा तो वेद भी चुप हो गया था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक हॉस्पिटल के आगे जाकर रुकी। शिवांशा हैरानी से वेद की तरफ देखने लगी। वो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। ऐसे में हॉस्पिटल के अंदर जाना उसे अजीब लग रहा था। हम यहाँ क्यों आए हैं? आपकी तबीयत खराब है क्या? शिवांशा ने मासूमियत से पूछा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं, वेद ने जवाब दिया। लेकिन मुझे क्या हुआ है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए यहाँ से चलते हैं, मुझे इन कपड़ों में काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, प्लीज़, शिवांशा ने काफ़ी रिक्वेस्टिंग वे में कहा। तुम ठीक हो, रियली? वेद ने भौहें चढ़ाकर कहा। ना तो ठीक से रात को खुद सोती हो और न ही मुझे सोने देती हो। पूरे दिन काम करने के बाद मुझे सिर्फ रात को आराम करने का टाइम मिलता है, और उसमें भी अगर एक छोटा सा शोर हो तो मैं उठ जाता हूँ। तुम्हें एहसास भी है कि तुम नींद में न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती हो और फिर चिल्लाकर उठ जाती हो। इन सब से मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। खुद तो चैन से सो नहीं पाती और मेरी भी नींद हराम कर रखी है। चुपचाप अंदर चलो, हम साइकेट्रिस्ट के पास चल रहे हैं। साइकेट्रिस्ट का नाम सुनकर शिवांशा की आंखें बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से ना में सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आगे से मैं रात को बाहर सो जाया करूँगी, आपकी नींद खराब नहीं होगी। और किसी ने तुम्हें बाहर देख लिया फिर क्या होगा? देखो, बेवजह की बहस मत करो, चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलो, वेद ने सख्त आवाज में कहा। शिवांशा लाचारी से उसकी तरफ देखने लगी। वो वेद की बातों को अनसुना भी नहीं कर सकती थी, पर आंखों ही आंखों में वो यही कह रही थी कि उसे अंदर नहीं जाना है। शिवांशा ने गहरी सांस ली और हल्की घबराई आवाज में कहा, आपको सब जानते हैं, ऊपर से आज तो हम दोनों की रिसेप्शन पार्टी भी थी। आप इस तरह मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कि आपकी पत्नी पागल है? लोगों का तो पता नहीं, लेकिन अब मुझे तुम जरूर पागल लग रही हो। साइकेट्रिस्ट के पास लोग थेरेपी लेने जाते हैं और मेंटली डिस्टर्ब्ड लोग पागल नहीं होते हैं। अब मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, बाहर निकलो, वेद ने बहस को वहीं खत्म करते हुए कहा। वेद खुद गाड़ी से बाहर आ गया था तो शिवांशा के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली। वेद ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ ही देर में वे हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट सीनियर डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल के सामने बैठे हुए थे। वहां आते ही वेद ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया। डॉक्टर के जेस्चर से साफ था कि वेद ने पहले ही उनसे शिवांशा की कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आप यहीं वेट कीजिए मिस्टर चौहान, मैं आपकी वाइफ के साथ एक छोटा सा सेशन देकर आती हूँ, डॉक्टर सृष्टि ने कहा, और फिर वेद के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करके शिवांशा के साथ अपने केबिन के पास वाले कमरे में चली गईं। सृष्टि ने शिवांशा के चेहरे की तरफ गौर से देखा। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। सृष्टि उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बैठने का इशारा किया। आप इतना डर क्यों रही हैं मिसेस चौहान? ये एक नॉर्मल सा सेशन है जहां हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, सृष्टि ने उसे कंफर्टेबल करने के लिए कहा और फिर उसके सामने पानी का गिलास रख दिया। शिवांशा ने एक झटके में पानी का गिलास खाली कर दिया, जिससे सृष्टि समझ गई कि वो काफ़ी नर्वस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपकी रिसेप्शन पार्टी थी, पार्टी कैसी रही मिसेस चौहान? आज की पार्टी शिवांशा के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पूरे दिन से अंकुश की वजह से वो काफ़ी घबराई हुई थी। ऊपर से अंकुश ने कमरे में उसके साथ जो भी किया था उससे शिवांशा काफी डर गई थी। सृष्टि के सवाल पर शिवांशा ने अपना थूक निगला और अपने दुपट्टे का कोना कसकर पकड़ लिया। उसके हाव भाव को नोटिस करते हुए सृष्टि ने कहा, अगर आप इस बारे में बात नहीं करना चाहती हैं तो जाने दीजिए। मिस्टर चौहान ने बताया था कि आप रात को अक्सर डरकर उठ जाती हैं, आपको बुरे सपने परेशान करते हैं। क्या किस तरह के सपने आते हैं आपको मिसेस चौहान? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, घर पर ज्यादा काम नहीं होता तो नींद कुछ खास नहीं आ पाती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर, आप जाकर उन्हें भी बोल दीजिए, उन्हें तसल्ली हो बस इसलिए कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ लिख दीजिए, बाकी सच में मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, शिवांशा ने सफाई में कहा। सृष्टि ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। उसके बर्ताव से वो समझ गई कि इतनी आसानी से वो उनके सामने नहीं खुलने वाली है। न जाने कितने सेशंस लगेंगे जब शिवांशा अपने दिल की बात उनके सामने रख पाएगी। सृष्टि ने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया, वो पहले से ही परेशान लग रही थी। सृष्टि ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और कहा, ठीक है मान लेती हूँ आपकी बात को, आप एक छोटा सा काम कीजिए, जब सोने लगें तब अपनी अच्छी यादों को याद कीजिए ताकि बुरे सपने और डरावने लोग आपको परेशान ना करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, शिवांशा ने जवाब दिया। सृष्टि ने शिवांशा को बाहर आने का इशारा किया। लगभग 20 मिनट बाद सृष्टि और शिवांशा बाहर आ गए। वेद ने शिवांशा के चेहरे की तरफ देखा जिस पर पहले की तरह ही घबराहट के भाव थे। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है मिस्टर चौहान, सृष्टि ने वेद से कहा। वेद शिवांशा को अकेले भी नहीं छोड़ सकता था, सृष्टि अकेले में बात करने को कह रही थी तो बात भी जरूरी ही होने वाली थी। वेद ने तुरंत प्रतीक को कॉल किया और उसे हॉस्पिटल आने को कहा। वेन्यू हॉस्पिटल से ज्यादा दूरी पर नहीं था, आधे घंटे में प्रतीक हॉस्पिटल पहुंच चुका था, तो वेद ने प्रतीक के साथ शिवांशा को घर भेज दिया। उनके वहां से जाते ही सृष्टि ने वेद की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, वेद उसने मुझे ठीक से कुछ नहीं बताया, इनफैक्ट तुमसे भी झूठ बोलने को कह रही थी, चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि काफी कुछ दिमाग में चल रहा है। सृष्टि और वेद क्लासमेट्स थे, इस वजह से वो उसे नाम से ही बुला रही थी। वेद पहले भी अपने खुद के सेशन के लिए सृष्टि के पास आ चुका था। हाँ परेशान तो काफी रहती है, मैंने तुम्हें बताया था नींद में अगर गलती से कोई टच भी कर ले तो डरकर उठ जाती है, इसकी स्लीपिंग हैबिट्स काफी अजीब हैं, कभी तो रात भर नहीं सो पाती तो कभी दिन में कहीं पर भी सो जाती है, वेद ने जवाब दिया।
हाँ क्योंकि इसकी बॉडी को आराम की जरूरत है, रात को सो नहीं पाती क्योंकि बुरे सपने परेशान करते हैं, और कहीं भी सो जाती है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है, सृष्टि ने गंभीर आवाज में कहा। तो क्या स्लीपिंग पिल्स हमारी हेल्प कर सकती हैं, वेद ने पूछा। वह नहीं चाहता था कि शिवांशा अपने सपनों में अंकुश जैसे आदमी को देखकर खुद की मेंटल कंडीशन को खराब कर ले। सृष्टि ने तुरंत ना में सिर हिलाया। स्लीपिंग पिल्स कभी भी सेफ ऑप्शन नहीं होती हैं, अगर सोने के लिए यूज की भी जाएं तो उसकी मेंटल हालत और खराब हो सकती है। सोचो ये सपने में किसी चीज में फंसी हुई हो, एटलीस्ट जागने पर वो सपना खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर पिल ली तो ये नींद से नहीं उठ पाएगी और उन चीजों को भुगतती रहेगी। आखिर चल क्या रहा है वेद, खुलकर बताओगे? वेद खुद के सेशन के लिए पहले भी सृष्टि के पास आ चुका था, और वैसे भी साइकेट्रिस्ट के साथ होने वाले सारे सेशंस कॉन्फिडेंशियल होते थे, वेद उस पर यकीन कर सकता था। वैसे भी कहा जाता है डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ये सोचकर वेद ने कुछ छुपाना सही नहीं समझा। जब मैं पहली बार इससे मिला था तब एक आदमी लगभग इसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला था, आज भी उसने इसे मैन्युपुलेट करने की कोशिश की। एक बात तो साफ है कि इसके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है, कब से हो रहा है नहीं पता, वेद ने धीमी आवाज में बताया। उसकी बातें सुनकर सृष्टि दंग रह गई, वह वेद जैसी पर्सनैलिटी को अच्छे से जानती थी, उसकी पत्नी के साथ कोई ऐसा कर रहा था और फिर भी उसने उसके खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया, ये बात उसे थोड़ी हैरान कर रही थी। ये तो बहुत गलत हुआ है, अगर तुम उस आदमी को जानते हो तो तुमने कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? पार्टी में भी उसके साथ उस आदमी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, वह तुम्हारी वाइफ है, ये जानते हुए भी कोई आदमी इस हद तक जा सकता है, मतलब वो कोई आम इंसान नहीं रहा होगा, तभी मैं सोचूं कि पार्टी का नाम सुनकर बेचारी इतना परेशान क्यों हो गई थी, सृष्टि ने अफसोस भरे अंदाज में कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी, ये कभी कुछ खुलकर बताती भी तो नहीं है, पता नहीं ये सिलसिला कब से चल रहा है, वेद ने गहरी सांस लेकर कहा। जिस तरह से तुम बता रहे हो मतलब साफ है कि सिलसिला काफी लंबे टाइम से चल रहा है, डोंट वरी सेशन से ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे नहीं लगता 2-3 महीने तक तो ये ठीक से खुल भी पाएगी, पर मैं गारंटी देती हूँ कि अगले 7 से 8 महीने में मैं तुम्हारी वाइफ को बिल्कुल ठीक कर दूंगी, सृष्टि ने मुस्कुरा कर कहा, पर वेद के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। उसने 7-8 महीने का टाइम दिया था, जबकि वेद तो एक एक दिन गिन रहा था कि कब 6 महीने पूरे हों और वे शिवांशा का किस्सा खत्म कर दे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, वेद ने उसे टालने के लिए कहा। सृष्टि ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और कुछ मेडिसिन्स देते हुए कहा, मल्टीविटामिन और एंटी एंग्जाइटी पिल्स लिख रही हूँ। दिखने में भी काफी दुबली पतली लग रही थी, सही तरीके से डाइट लेगी तो ठीक हो जाएगी। वेद ने सृष्टि से प्रिस्क्रिप्शन लिया और फिर मेडिसिन्स के साथ घर पहुंच चुका था। उसके बाकी फैमिली मेंबर्स अभी तक घर नहीं आए थे। वहीं वेद दवाइयों के साथ जब ऊपर पहुंचा तो उसने देखा शिवांशा अभी भी शादी के जोड़े में ही घूम रही थी। वह इतनी परेशान थी कि उसे चेंज करना तक याद नहीं आया। जैसे ही वेद अंदर आया, शिवांशा जल्दी से उसके पास जाकर बोली, डॉक्टर ने आपसे अकेले में क्या बात की? मैंने उन्हें कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुरे सपने सबको आते हैं, ये एक नॉर्मल सी चीज है, फिर इसके लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? वेद शिवांशा के सवालों का जवाब देने के बजाय उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी छोटी काली आंखों में हमेशा एक अनजाना सा दर्द छुपा रहता था। वेद ने मुश्किल से इतने दिनों में उसे स्माइल करते हुए देखा होगा। कोई थोड़ा सा भी डांटता या तेज आवाज में बात करता तो वो रोने तक लग जाती थी। हर छोटी आहट उसके दिल में एक बड़ा डर पैदा कर देती थी। कई बार तो वेद ने खुद महसूस किया था कि वो सपने में कैसे डर कर उठ जाती थी। शिवांशा मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए अपने सवालों का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक वेद ने गंभीर अंदाज में कहा, आखिर कब से चल रहा है ये सब? क्या कब से चल रहा है? मैं समझी नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? शिवांशा ने उलझन भरे स्वर में पूछा। उसे दिल ही दिल में डर लग रहा था कि कहीं उसकी गलती की वजह से वेद की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो गई हो। मैं अंकुश की बात कर रहा हूँ, वह तुम्हें फिजिकली अब्यूज कर रहा था, ये कब से चल रहा है? मुझे झूठ नहीं सुनना है, वेद ने शिवांशा की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक गहरा गुस्सा था। उसका सवाल सुनकर शिवांशा नानो अपनी जगह पर जम रही हो। आज तक किसी ने उसकी तकलीफ के बारे में नहीं पूछा था। वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाने लगी। जब शिवांशा को लगा कि वह अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो वह जल्दी से दूसरी तरफ पलटने लगी, लेकिन उससे पहले ही वेद ने उसका दुपट्टा पकड़ा और उसे बिना छुए घुमाकर उसका चेहरा वापस अपनी तरफ कर लिया। मेरे सवालों से भागने की कोशिश मत करो, जब तुम ठीक से कुछ नहीं बताती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सच बताओ, कब से वो ये सब कर रहा है? वेद ने सर्द आवाज में पूछा। उसका सवाल सुनकर शिवांशा मानो अपनी जगह पर जम गई हो। आज तक किसी ने उसकी तकलीफ के बारे में नहीं पूछा था। वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करने के लिए जल्दी जल्दी पलके झपकाने लगी। जब शिवांशा को लगा कि वह अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो वह जल्दी से दूसरी तरफ पलटने लगी, लेकिन उससे पहले ही वेद ने उसका दुपट्टा पकड़ा और उसे बिना छुए घुमाकर उसका चेहरा वापस अपनी तरफ कर लिया। मेरे सवालों से भागने की कोशिश मत करो, जब तुम ठीक से कुछ नहीं बताती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सच बताओ, कब से वो ये सब कर रहा है? वेद ने सर्द आवाज में पूछा। इस बार शिवांशा के पास वेद के सवालों से बचने का कोई तरीका नहीं था। शिवांशा तो उस बारे में बात तक करने से डरती थी, क्योंकि उसके जख्म हरे हो जाते थे, लेकिन आज वो वेद से किसी भी हाल में बच नहीं सकती थी और उसे कुछ बताना ही होगा। पर क्या शिवांशा वेद को इस बारे में बताएगी? आप चाहते थे वेद और शिवांशा के बीच के हालात कुछ ठीक हों तो उसकी शुरुआत हो गई है। कृपया पढ़कर समीक्षा करें ताकि राइटर को आगे लिखने का मोटिवेशन मिले।